पृष्ठ संख्या 52, अध्याय 4, 1889 का मेजी संविधान का शेष भाग। शुरू से ही सम्राट सेना एवं नौसेना का सर्वोच्च नायक होता था तथा इन विभागों के मामले में वह मंत्रियों की सलाह के लिए भी बाध्य नहीं था। मेजी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे सम्राट के इन विभागों से संबंधित आदेशों की समीक्षा की जा सके। अतः कई युद्ध या औपनिवेशिक विस्तार संबंधी निर्णय लिए गए जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, अर्थात सम्राट ने राष्ट्र की शान और संप्रभुता के नाम पर कई ऐसे निर्णय लिए जिनसे जापान को आघात पहुंचा। इन संसाधनों का उपयोग देश के विकास एवं प्रगति के लिए किया जा सकता था, बशर्ते कि ऐसी व्यवस्था होती थी कि किसी भी सम्राट का एक उच्च कोटि का नेता होना आवश्यक होगा तथा सभी मंत्री एवं सेनानायक राष्ट्र के हित में कार्य करेंगे। जैसे ही गैनरो वर्ग की पीढ़ी, जिन्होंने संविधान बनने के प्रथम दो दशकों में प्रधानमंत्री पद संभाला था, समाप्त हुई, संविधान में निहित असमानताएं उभरकर सामने आ गई, जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा एवं उसके चुनाव का क्या आधार हो इत्यादि। जैसे जैसे समय बीतता गया, संसद में विभिन्न दलों के शीर्षस्थ नेता ही प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री पद के दावेदार रह गए। फलस्वरूप मंत्रिमंडल दलगत राजनीति का आंकड़ा बनकर रह गया। इसके अलावा सेना एवं नौसेना को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, जिसके तहत कभी भी इन विभागों के मंत्री मंत्रिमंडल से अलग रह सकते थे, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए समस्या हो गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि राष्ट्र के हितों के बारे में सेना एवं नागरिक प्रशासन के बीच मतभेद थे। यह कहना कठिन है कि ईतो को इन समस्याओं का ज्ञान था या उन्होंने जानबूझकर इन प्रावधानों को चलने दिया ताकि उनका सर्वोच्च स्थान बना रहे या संदिग्धता बनी रहे ताकि स्वच्छ संविधान उभर कर सामने आ सके। रोसलर को भी यह अंदाजा नहीं था कि जापानी नेता सही मायनों में अभिजात वर्ग से ताल्लुक रखते थे, जिससे इस वर्ग के विचारों को अगली पीढ़ी तक ले जाया जा सके। उस समय के नेताओं के बीच के मतभेदों का भी ज्ञान रोसलर को सही मायने में नहीं था, परंतु संविधान की इन संदिग्धताओं से ही एक स्वस्थ संविधान का विकास संभव हुआ। अंततः कई मामलों में इसके विफल होने की जिम्मेदारी ईतो पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी पर होनी चाहिए, क्योंकि मेजी संविधान में सिर्फ सत्तावाद ही नहीं था, इसमें कई उदारवादी विचारों का भी समागम हुआ था ताकि सत्तावादी इच्छाओं को रोका जा सके। उदाहरण के तौर पर विधान शक्ति का उपयोग सम्राट संसद की स्वीकृति से ही कर सकता था, जिसके बिना यह कानून नहीं बन सकता था। संसद का दूसरा मुख्य कार्य कानून संबंधी मामलों में सरकार के समक्ष प्रतिवेदन करना, सम्राट को संबोधित करना तथा जनता से आवेदन प्राप्त करना इत्यादि था। तीसरे, संसद के दोनों सदनों को संविधान के प्रावधानों के अलावा भी नियम बनाने का अधिकार था ताकि आंतरिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा भी संसद को सरकार से प्रश्न करने एवं दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार था। हालांकि संविधान में संसद सदस्यों की मदद से मंत्रिमंडल का गठन एवं उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु मंत्रिमंडल संसद से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता था तथा विश्वास मत प्राप्त करना भी कई बार अनिवार्य हो जाता था। जब भी विश्वास मत की बात आती थी, सरकार संसदीय प्रणाली की भांति या तो इस्तीफा दे देती थी या निम्न सदन भंग कर दिया जाता था ताकि आम चुनाव हो सके। मेजी संविधान का उत्तरदायी पहलू न्यायपालिका के क्षेत्र में सबसे अधिक ज्ञात होता है। संविधान में इस बात को महत्व देकर कहा गया था कि न्यायिक निर्णयों का मुख्य आधार कानून होगा तथा न्यायपालिका विशेषकर कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र रहकर कार्य करेगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके जीवन काल तक के लिए कर दी गई ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को परोक्ष रूप से भी आघात न पहुंच सके। मेजी राजनीतिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद विषय प्रभुसत्ता का स्वरूप है। जैसा कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद से ज्ञात होता है, इसके अनुसार जापानी साम्राज्य का शासन सम्राटों की उस अटूट कड़ी से होगा जो अनंतर काल से चली आ रही है। द एम्पायर ऑफ जापान शैल बी रेग्न ओवर एंड गवर्न बाई ए लाइन ऑफ एम्पायर्स अनब्रोकन फॉर एज इटर्नल। हालांकि किसी भी राज्य धर्म का उल्लेख नहीं किया गया था, परंतु शाही प्रभुसत्ता को जापानी सभ्यता के एकीकृत धार्मिक सिद्धांत कोकुताए से रक्षित किया गया था। कोकुताए का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय शासन प्रणाली है, परंतु इसका उपयोग मीतो विचारधारा द्वारा राष्ट्रीय भावना के संदर्भ में किया गया था। कोकुताए के अनुसार समूचा राष्ट्र एक शरीर के समान है, जिसका सिर सम्राट है। देश की बाकी हिस्से जैसे जनता सम्राट से सीधे शरीर के विभिन्न अंगों की तरह हमेशा के लिए जुड़े हैं। अतः कोकुताए के अनुसार जापान एक पितृसत्तात्मक राज्य पैट्रियार्कल स्टेट है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, तथा शाही घर मुख्य परिवार है। सम्राट श्रेष्ठ पिता है तथा उसके प्रति निष्ठा एवं राष्ट्रीयता सबसे बड़ा कर्तव्य है। अतः कोकुताए राष्ट्र एवं व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं भौतिक मूल्यों को दर्शाता है, जिनको संजोए रखना सर्वोच्च कर्तव्य है। कोकुताए के सिद्धांतों को मेजी संविधान में अंगीकृत करने का मुख्य कारण यह था कि जापान में धार्मिक परंपरा एवं संवैधानिक अधिकारों का अभाव था। जापानी नेताओं का यह मत था कि सिर्फ कोकुताए ही राष्ट्र को एकता एवं निरंतरता प्रदान कर सकता है, परंतु कोकुताए का पुनर्विश्लेषण सम्राट की संपूर्ण प्रभुसत्ता के संदर्भ में किया गया। यह एक दुर्भाग्य है कि रोसलर सम्राट के स्थान को सही रूप में नहीं आंक पाया। रोसलर ने शाही प्रभुसत्ता पर इसलिए बल दिया क्योंकि उसका मानना था कि सम्राट जापान की राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेगा, जैसे मंत्रिमंडल का नेतृत्व करना इत्यादि। वास्तव में पिछली कुछ सदियों से सम्राट जापान वास्तविक शासक नहीं रह गया था। जहाँ तक सक्रिय निर्णय का प्रश्न है, सम्राट केवल एक नाम बनकर रह गया था। वास्तव में पौराणिक संदर्भ हो जिन्हें रोसलर ने नकार दिया था, परंतु जो संविधान के प्रथम अनुच्छेद में निहित थे, के आधार पर ही सम्राट को राजनीतिक एवं सक्रिय निर्णय प्रणाली से अलग रखा गया था। अतः मेजी संविधान ने न केवल प्रभुसत्ता को सम्राट के रूप में संस्थापित किया, बल्कि इसने सम्राट के पद को विश्वसनीयता प्रदान की, जिसका आधार सदियों पुराना था।